तब अचानक अविनाश के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े से डार्क हो गए थे और कुछ सोचते हुए वो आस्था की ओर देखकर बोला था, अच्छा गोरी, जिस तरीके से अरमान का बर्ताव था, हमें लगने लगा था कि वो तुम्हारे लिए किसी भी तरह से काबिल नहीं है। लेकिन इतना हम समझ चुके हैं कि तुम लोग दो जिस्म और एक आत्मा हो और हमेशा से ऐसे ही रहना। बस कभी भी तुम्हारी जिंदगी में कोई गम ना आए और तुम्हारे गम तुमसे पूछने से पहले मेरी जिंदगी में आ जाए। जैसे ही अविनाश ने इस तरह की बातें कहीं, आस्था ने अविनाश को गले से लगा लिया था। वहीं नानी माँ हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आंखों में नमी लिए बोली थी, अरे बेटवा, क्या हो गया है? घर में इतना अच्छा माहौल है, दो दो दुश्मनों का सफाया हो चुका है, वरना हमको तो ऐसा लग रहा था कि हम तो उन दुश्मनों के बीच में उलझ कर रह जाएंगे। बाप रे बाप, कितने खतरनाक थे वो लोग। और आस्था बेटी, तुम्हारा वो ड्रामा तो अभी तक हमारी आंखों के सामने से जा ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कि हमारा कलेजा ही मुंह को आ गया था। पर हमारे कान्हा का बहुत बहुत शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। ये बोलकर नानी माँ ने आगे बढ़कर एक बार फिर आस्था के माथे को चूम लिया था। फिलहाल अब तुरंत ही मनोज जी, सीमा जी और साथ ही साथ प्रियंका हाथ जोड़कर सीधे अरमान और आस्था के साथ नानी माँ के सामने खड़े हो गए थे और बोले थे, अब क्योंकि सब कुछ ठीक हो चुका है और सम्राट व राजवीर आप लोगों के कब्जे में हैं, हमें नहीं पता कि आप लोगों ने उनके लिए क्या सज़ा तय की है, लेकिन हम ज़्यादा दिनों तक इस तरह से सिंघानिया मैंशन में नहीं रह सकते और अब तो किसी तरह का कोई ख़तरा भी नहीं है, इसीलिए हम आप लोगों से जाने की इजाज़त मांगने के लिए आए हैं। अब जैसे ही मनोज जी ने ये कहा, आस्था थोड़ा सा परेशान हो गई और बोली थी, आप कैसे बातें कर रहे हैं मामी जी, आप इस तरह से भला कैसे जा सकते हैं, और वैसे भी प्रियंका दीदी ने इतना सब कुछ झेला है, आप अकेले उन्हें कैसे संभाल पाएंगे, और अभी तो राजवीर जिंदल को सज़ा मिलना बाकी है, हम चाहते तो उन्हें इस वक्त मौत दे सकते थे, लेकिन नहीं, जिस कदर उन्होंने हम सबकी ज़िंदगी बर्बाद की और ऊपर से उस बेचारी मासूम नैना माथुर जी की ज़िंदगी तबाह की, तो उस इंसान को बहुत भयानक सज़ा मिलनी चाहिए, मौत उसके लिए बहुत आसान सज़ा होगी, इसीलिए अभी तक हमने उसे ज़िंदा रखा हुआ है, उसका इलाज करने के बाद एक बार फिर से हम उसे सज़ा देंगे और उसे एहसास करवाएंगे कि किस तरीके से उसने सबकी ज़िंदगी से खिलवाड़ किया था। तभी आहान के अंदर की क्यूरियोसिटी और ज़्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि नैना माथुर का नाम एक बार फिर से उसके सामने आया था। दरअसल थोड़ी देर पहले उसने ध्रुव से कहा था कि वो जाकर अरमान भैया से सवाल करे कि आखिरकार वो राजवीर को सज़ा क्यों नहीं दे रहे हैं, लेकिन ध्रुव ने अपने हाथ खड़े कर लिए थे। लेकिन अब सामने आहान था और उसके मन में जब तक उसके सारे सवाल खत्म नहीं हो जाते वो चुप कहाँ रहने वाला था। फिलहाल अपनी क्यूरियोसिटी के साथ वो धीरे धीरे चलते हुए आस्था के पास आया और बोला था, आस्था भाभी, पर हमें समझ में नहीं आया, आखिरकार आप लोगों को नैना माथुर के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता चला? मेरा मतलब है कि किसी ने भी उसके बारे में नहीं सोचा, फिर अचानक आप लोगों को कैसे पता चला और आपने हमें भनक तक कैसे नहीं लगने दी? तभी आस्था ने गहरी सांस ली और बोली थी, आहान भैया, जिस वक्त हम प्रियंका दीदी को यहाँ लेकर आए थे और मामा जी को डरता देखकर हमें कुछ अजीब सा लगा और हम इतना तो समझ चुके थे कि राजवीर जिंदल ने अपनी मरी हुई बीवी की शक्ल प्रियंका दीदी को दी है, लेकिन असल में ये शक्ल है किसकी, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी, हम तो उसे केवल राजवीर की बीवी के नाम से जानते थे, इसीलिए हमने उसके बारे में थोड़ी सी जांच पड़ताल की। कान्हा जी की कृपा से हमें उनकी पूरी डिटेल मिल गई। तब कहीं 40 साल पहले के एक न्यूज़पेपर में उनकी खबर मिली कि नैना माथुर ने बेहद दर्दनाक तरीके से अपने ही परिवार की जान ले ली थी। तब हम थोड़ा सा चौंक गए कि भला एक नाजुक सी लड़की इस तरीके से अपने परिवार की जान कैसे ले सकती है। और जब हमें ये पता चला कि माथुर परिवार के पहले से ही कई वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम चल रहे थे और उन सबकी देखरेख नैना माथुर ही करती थी, तो हमें और भी अजीब लगा। जब हमने गहराई से सारी बातों की पड़ताल की तो हम हैरानी से भर गए थे, लेकिन हमारे पास राजवीर के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, और वैसे भी हम चाहते तो राजवीर को मारकर दफना सकते थे, लेकिन उसके बाद क्या होता, नैना माथुर का क्या होता, उसका सच तो दुनिया के सामने कभी आ ही नहीं पाता, और हम ये नहीं चाहते थे। और हम ये भी समझ चुके थे कि राजवीर को अगर हम आसानी से मौत दे देते तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे ज्यादा फर्क अगर उसे किसी चीज से पड़ता तो वो था अपनी रेपुटेशन खोने से और साथ ही साथ नैना माथुर की सच्चाई दुनिया के सामने आने से। इसीलिए हमने ये मौत का ड्रामा किया ताकि राजवीर खुद ब खुद अपने मुंह से नैना माथुर का सच बता सके, और देखा आपने, उसने सच बताया भी। तभी ध्रुव बोला था, लेकिन भाभी, आपने इतनी देर तक अपनी सांस कैसे रोकी? मेरा मतलब है कि राजवीर तो डॉक्टर है जो कि काफी ज्यादा शक्की दिमाग का इंसान है, उसे भला शक कैसे नहीं हुआ? आखिरकार उसने इतने सारे केस हैंडल किए हैं, उसे जिंदा और मरे हुए लोगों में फर्क अच्छी तरह से पता है। फिर आपकी तो सांसें भी नहीं चल रही थीं, मैंने खुद चेक किया था, तो फिर आपने ये सब कुछ कैसे मैनेज किया, मतलब मैं समझ नहीं पाया। तभी आस्था ने हल्की सी संयत मुस्कान के साथ सबकी ओर देखा और शांत मगर स्पष्ट स्वर में बोली, इसमें थोड़ा सा जोखिम था ध्रुव भैया, लेकिन हमारे पास एक ठोस योजना भी थी। आप जानते हैं ना, प्रोफेसर प्रशांत जी, वंशिका के बाबा, हम उनसे मिले थे। उसी दौरान उन्होंने हमें एक विशेष प्रकार की दवाई दी थी। आस्था ने एक गहरी सांस ली, जैसे वो उस पल को फिर से जी रही हो, और आगे बोली, उन्होंने बताया था कि अगर हम ये दवाई ले लेते हैं तो इसका हमारे शरीर पर कोई स्थायी दुष्प्रभाव नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये राजवीर जैसे इंसान को भ्रमित करने के लिए काफी होगी। ये दवाई हमें लगभग 30 से 40 मिनट तक अचेत अवस्था में रख सकती है, और उस दौरान हमारे चेहरे का रंग हल्का पीला पड़ जाता है, जिससे देखने वाले को यही लगे कि हमारी मृत्यु हो चुकी है। उसने सभी की ओर गंभीर नजरों से देखते हुए अपनी बात पूरी की। इतना ही नहीं, कुछ समय के लिए हमारे शरीर की रक्त धमनियों की गति भी बहुत धीमी हो जाती है। इसी वजह से आप सभी को ऐसा लगा कि हमारी सांसें थम चुकी हैं और हम इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन इसके बारे में सिर्फ अरमान जी ही जानते थे और कोई नहीं जानता था। लेकिन हाँ, उन दवाइयों को लेने के बाद भी राजवीर का एक एक शब्द और आप सब लोगों का दर्द हमें साफ साफ सुनाई दे रहा था। इनफैक्ट जब हमने अविनाश भैया को रोते हुए देखा, तब तो हम खुद को रोक ही नहीं पाए। हमें लगा कि हमें नाटक बंद कर देना चाहिए और जल्दी से जाकर अपने भैया को गले से लगा लेना चाहिए। आप सब लोगों को रोते हुए देखकर हमारा दिल दुख रहा था, लेकिन उस वक्त हम मजबूर थे। अगर हम वो ड्रामा नहीं करते तो राजवीर अपने मुंह से सच्चाई नहीं बताता, और फिर हमारा पूरा प्लान धरा का धरा रह जाता। और वैसे भी नानी माँ ने ही हमें एक बार सिखाया था कि अगर बुराई को खत्म करना है तो उसके लिए बुरे लोगों को मारना जरूरी नहीं होता, बल्कि उस बुराई को जड़ से मिटाना जरूरी होता है जो उन्हें बुरा बनाती है। बस उसी सीख का अनुसरण करते हुए हमने ये सब किया। और राजवीर और सम्राट जैसे इंसान ऐसे लोग हैं जो किसी भी हद तक जाकर किसी भी जिंदगी में पूरी तरह अंधेरा भर सकते हैं, और ऐसे लोगों को सिर्फ मारना ही हमारा मकसद नहीं था, बल्कि उनकी बुराई को जड़ से खत्म करना ही हमारा असली उद्देश्य था।
ये कहते हुए कहीं ना कहीं आस्था के चेहरे पर एक बार फिर से सम्राट और राजवीर के लिए नफरत साफ झलकने लगी थी। तभी आस्था ने आगे कहा, फिलहाल उस वक्त हमें जो सही लगा हमने वही किया। अब जैसे ही आस्था ने ये कहा, तभी जल्दी से आकाश बोला, अच्छा आस्था, लेकिन वो सम्राट तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा था, फिर अरमान ने अपने आप पर कंट्रोल कैसे किया? जैसे ही आकाश ने अरमान की ओर गहरी नजरों से देखते हुए ये सवाल किया, सबने अनायास ही अपने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वहीं तुरंत ध्रुव के कानों में आहान ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, देखा तुमने, अरे तुमसे ज्यादा हिम्मत तो आकाश भैया में है, किस तरीके से उन्होंने सामने से ये सवाल कर लिया, वरना ये सवाल तो कब से तुम्हारे दिमाग में भी खटक रहा होगा। इस पर ध्रुव हल्का सा झुंझलाते हुए बोला, तुझे मेरे दिमाग का इतना अच्छा अंदाजा कैसे है, और तुझे कैसे पता कि ये सवाल मेरे दिमाग में भी आया होगा? फिलहाल अब चुपचाप खड़ा रहे और वहां देख। वहीं अरमान ने बस अपनी नजरें उठाकर आकाश की ओर देखा था, मानो वो उसकी हिम्मत की तारीफ कर रहा हो कि आखिरकार उसने अरमान सिंघानिया के सामने ये सवाल पूछने की हिम्मत दिखाई है। फिलहाल तब आस्था जल्दी से मुस्कुराकर बोली थी, हम जानते हैं आकाश भैया, इसलिए तो हमने इन्हें अपनी कसम दे रखी थी कि चाहे सिचुएशन कुछ भी हो जाए, इन्हें किसी भी तरह से रिएक्ट नहीं करना है। पहले हमें सारा सच जानना है, वरना आप तो जानते ही हैं ना मिस्टर सिंघानिया को, अगर किसी ने हमारी ओर आंख उठाकर भी देखा या किसी ने मेरे बारे में उल्टी सीधी बकवास की तो ये तो इस वक्त उसकी बेरहमी से जान ले लेते, और फिर हम कुछ भी सच नहीं जान पाते। इसलिए तो हमने सावधानी रखते हुए सबसे पहले इन्हें अपनी कसम दे दी। जैसे ही आस्था ने हल्की मुस्कुराहट के साथ ये कहा, कहीं ना कहीं सभी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। तभी नानी माँ बोली थी, अरे बस करो बच्चों, प्लीज प्लीज, अब बार बार हमें ये सारी बातें बिल्कुल भी नहीं सुननी है, और वैसे भी उन दो राक्षसों का नाम तो हमारे सामने लेना भी मत, अब जो हो गया सो हो गया, अब उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। अब फिलहाल अरमान बेटा, कब तक तुम उनका इलाज करवाओगे, कब तक वो ठीक होंगे, और आखिर क्या सजा देना चाहते हो उनको? जो भी करना है करो, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा करो कि उनकी परछाई भी हमारे बच्चों पर ना पड़े। जैसे ही नानी माँ ने गुस्से में राजवीर और सम्राट का जिक्र किया, कहीं ना कहीं सबकी आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी। वहीं प्रियंका गुस्से से कांपते हुए बोली थी, मैं उस राजवीर की अपने हाथों से जान लेना चाहती हूँ, जब तक मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगी मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलेगा। प्रियंका की नफरत का अंदाज़ा सभी को अच्छी तरह से हो रहा था। फिलहाल तब आस्था ने प्रियंका का हाथ थामा और बोली थी, शांत हो जाइए प्रियंका दीदी, शांत हो जाइए, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, और वैसे भी उस राजवीर जिंदल को उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, और इस वक्त उसका जिंदा रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि अपने किए गए गुनाहों का एहसास वो खुद कर सके। जैसे ही आस्था ने प्रियंका को समझाया, वो धीरे धीरे शांत हो गई थी। तभी वंशिका जल्दी से आस्था के पास आई और बोली, आस्था, सचमुच तुमने डरा दिया था, फिलहाल जैसा कि नानी माँ ने कहा है, हम इस बारे में अब कोई भी बात नहीं करेंगे। अब हम एक बार फिर से अपनी जिंदगी की नए सिरे से शुरुआत करेंगे, जिसमें ना कोई दुश्मन होगा, ना ही किसी तरह का कोई झगड़ा, जलन या नफरत। बस एक खुशहाल परिवार होगा जिसमें हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे। कहीं ना कहीं ये कहते हुए वंशिका की आंखों में एक अलग ही तरह की खुशी साफ झलक रही थी। वहीं ध्रुव वंशिका को इस तरह खुश देखकर अंदर ही अंदर सुकून महसूस कर रहा था। आखिरकार अपनी बीवी की खुशी ही उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थी। जैसे ही ध्रुव वंशिका को खुश देखकर मुस्कुरा रहा था, तभी आहान ने तुरंत ही उसे कोहनी मारते हुए कहा, वैसे भाई साहब कुछ भी कहो, इस घर के जब बड़े बड़े अपनी अपनी बीवियों के साथ इस तरह हमारे सामने रोमांस करेंगे तो हम पर तो थोड़ा असर पड़ेगा ही ना। ध्रुव ने हल्की नाराजगी से उसकी ओर देखा, लेकिन आहान वहीं नहीं रुका और हंसते हुए बोला, अच्छी बात है वैसे भी, वरना तेरी शक्ल पर तो हमेशा 12 ही बजे रहते हैं। जैसे ही आहान ने ध्रुव की टांग खींचते हुए ये कहा, ध्रुव उसे लाल आंखों से घूरते हुए बोला, अच्छा और तो जो रौनक के साथ जब देखो कहीं भी शुरू हो जाता है उसका क्या? अब मैं क्या अपनी बीवी को मुस्कुराकर देख भी नहीं सकता? तेरी नजरों में वो भी रोमांस है। तभी आहान ने तुरंत बात संभालते हुए रौनक की ओर मुस्कुराकर देखा और बोला, यार हमारी बात अलग है, मैं घर का छोटा बेटा हूँ और मुझ पर तो सब कुछ सूट करता है, लेकिन तुम लोग बड़े और मैच्योर हो तो तुम्हें तो समझदारी से काम लेना चाहिए। आखिरकार ये बच्चों वाला घर है, इसका सब पर क्या असर पड़ेगा? फिर उसने बात को और घुमाते हुए कहा, अब कल को हमारा चैंप यानी अंश किसी लड़की को लाकर हमारे सामने खड़ा कर देगा कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं इसके साथ रोमांस करना चाहता हूँ, तो तुम ही बताओ तब कैसा लगेगा? जैसे ही उसने बात को इस तरह घुमाकर पूरा किया, ध्रुव हैरान रह गया। वहीं आहान मन ही मन मुस्कुरा रहा था, बाप रे बाप कितना खतरनाक है, कब कहां से कहां बात घुमा दे इसका कोई पता ही नहीं चलता। फिलहाल वंशिका की बात सुनकर आस्था ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और तभी जैसे